शत्रु जो कथा में अनाउंस करते हैं देखे हैं ना हरिद्वार के उनके सुपुत्र हैं उनको तो आप जानते हैं ना उनके पुत्र हैं उनके पुणे में रहते हैं उनके कुमार स्थान में भी सेवा दिला है उनका लोग कुछ वैष्णव बाबा के साथ
Amen.
another day lost to the iron. Oh, no more another day lost to the iron. Oh, no more another day lost to the iron. भगवान हस्तिनापुर पर तो द्वारिका जा रहे हैं, तो उनका स्वागत हो रहा है हस्तिनापुर में महाराज दृष्टि के द्वारा। बड़े बड़े ब्राह्मण स्वस्थ वाचन कर रहे हैं, अर्जुन खुद उनका चामर दिला रहे हैं, उद्धव चामर दिला रहे हैं, सप्तति छत्र दिए हुए हैं, बहुत सुंदर सीन है। और जो लोग सामने आ सकते हैं तो आकर उनका अपना अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन कुछ कुर्कुम की नारियां जो छत पर है घूंघट में रहते हैं और सामने नहीं आ सकती, वो आपस में बात कर रहे हैं भगवान के विषय में, तो भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं उन कुर्कुम की स्त्रियों का जो बात है वो स्तुति मनोहर है। स्तुति मनोहर का अर्थ लिखते हैं कि अनन्यो मासिक संजलते उत्तम श्लोक चेतसा में कौरवंदा पुरस्तीणाम सर्व स्तुति मनोहर। तो अनन्यो आपस में आसीनम संजल्प, संजल्प कहते हैं जैसे कुछ को कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और मैं बोलता हूँ अगर मैं भी इसको कुछ कहता हूँ, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, बोलते हैं। क्या संकल्प है उनका, गप क्या है उत्तम श्लोक चेतसा, उनका चित्त भगवान में लगा हुआ है। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक कहते हैं प्रशंसा को, जिनके उत्तम श्रेष्ठ श्लोक में जिनकी स्तुति की जाए, जिनकी प्रशंसा की जाए, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक में जिनका चित्त लगा हुआ है ऐसी स्त्रियां आपस में बात कर रही है। कौन कौरवेंद्र पुरस्तीणाम, कुर्कुम के पैर में रहने वाले एकदम मर्यादा में रहने वाली स्त्रियों के बीच बात कर रहे हैं। उसकी विशेषता कह रहे हैं सर्व स्तुति मनोहर। सर्व स्तुति मनोहर का अर्थ है स्तुति के दो अर्थ है, स्तुति माने कान, सबके कान को अच्छा लगने वाला, और स्तुति माने वेद शास्त्र, वेद के चित्त को भी आकृष्ट करने वाला। में बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सवई किलायम पुरुषम पुरातनो लोक आसित विशेष आत्मन। ये कह रहे सखी जानती है कौन है, जब इस सृष्टि का कोई भी वस्तु कुछ भी नहीं था तब आया पुरुष था। गया कोई जगत नहीं था, कोई पर्वत नहीं, पहाड़ नहीं, नदी नहीं, सरोवर नहीं, आदमी नहीं, पशु नहीं, कुछ नहीं था। सबसे पहले यही एक थे, बस यही, और उनके ही संकल्प से सृष्टि हुई है। यहाँ जो कुछ भी देख रहे हो सब इन्हीं का विस्तार है, और जब महाप्रलय के समय सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तब भी वही एक बचेंगे, इसलिए इनका नाम शेष है। अब इतनी महत्वपूर्ण बात बताइए साधारण व्यक्ति कर सकता है। वैसे ही अनेक लोग चर्चा कर रही है, लगभग 10 श्लोक में, 10 श्लोक एक एक श्लोक कम से कम 2-2.5 घंटा का विषय है, तो मैं इतना विस्तार से नहीं जाऊंगा। इसी में ब्रज की महिमा बतला रही हूँ, उसी क्रम में उसी श्लोक को मैं यहाँ कहूंगा, आप बोलिए आगे। अहो अलम स्वागतम मधुर मनम आप देखना चाहते हैं प्रथम स्कंध के 10-26 नंबर का श्लोक है 1:10-26 इसका अर्थ है अहो अहो माने आश्चर्य में अहो एकदम चकित होकर कह रहे हैं अहो आश्चर्य है अलम अलम माने पर्याप्तम बहुत ज्यादा माने प्रशंसनीय प्रशंसनीय जैसे किसी विषय में कुछ अच्छे विषय को अंग्रेजी के तीन शब्द हैं गुड बेटर बेस्ट तो उसे भी ज्यादा कर देते हैं द बेस्ट तो श्लाघ्य श्लाघतर श्लाघतम श्लाघतम बहुत ज्यादा प्रशंसनीय अहो अलम भी कर रहे हैं श्लाघतम भी तो अहो यह बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है कौन जदोकुलम जदकुल इस समय सारे पृथ्वी पर जदकुल की प्रशंसा हो रही है जदकुल 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 ये बहुत प्रशंसनीय कुल है आज इसकी महिमा केवल पृथ्वी पर ही नहीं स्वर्ग से भी बढ़ गया है जदकुल जदकुल इतने प्रशंसनीय है और उसी प्रकार अहो अलम तमम मधुर बनम सबसे बढ़कर इस समय प्रशंसनीय कुल है जदकुल और सबसे बढ़कर पवित्रतम पवित्र पवित्रतम 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 बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला स्थान है ब्रजमंडल मधुवन मधुर वनम पूर्णतम मधुर वनम जहाँ पूर्ण प्राप्त किया जाता है जैसे गंगा में स्नान करना है पुण्यतर काम है दान देना गरीब की सहायता करना भूखे को भोजन देना रोगी की सहायता करना ये सब पुण्यतम पुण्यतर काम है पुण्य काम है लेकिन सबसे ज्यादा पुण्यतम काम है जगह है प्रवृत्त करने वाला वो है मधुबन। सबसे प्रशंसनीय कुल है गोदकुल और सबसे पवित्र स्थान है मधुबन। क्यों ऐसा क्यों हो गया है? दोनों का संबंध उनसे है। जब श्याम ऋषभपति जब ऐसा उन्हीं से दिखा रहे हैं यह पुरुषों में ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को ऋषभम श्रियापति लक्ष्मीपति जो सारे पुरुषों में बढ़कर सर्वश्रेष्ठ है यही परम पुरुष लक्ष्मीपति अपने जन्म से जन्मना अक्षर क्रमणा दो तरह से दोनों को वाहन बनाया है। जन्म लेकर जगपुर को जैसे शिव बनाया है और चल चल कर ब्रह्मांडों को पवित्र बनाया है। चंकमर करके पैदल चलकर बिना जोता चपल के घूम घूम कर ब्रजमंडल को पवित्र बना दिया है। जिनके चरणों के धाम गंगा सारे जगत में पवित्र नदी है, प्रसिद्ध नदी है। गंगा की विशेषता क्या हो गई है? क्योंकि वह उनके चरणों के धाम है। जो भगवान वामन देव के रूप में आए और बलि महाराज के यहाँ से लोके नापने लगे पराक्रम के रूप में, तो एक वर्ग में नीचे के लोग को नाप लिए और दूसरे वर्ग में ऊपर के लोग, तो ऊपर में कुछ कम न रहता है उसमें पेड़ पड़ रहा है एकदम कवर कर लिए। तो कवर करना हुआ क्या कि उनके अंदर से ब्रह्मांड का कवर फट गया और प्रत्येक ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड स्पेशल जो कारण जल है कारण समुद्र जिसमें कारणोदक साइस होते हैं और जगत की कल्पना करते हैं, तो कारणोदक जल में तैरता है फुटबॉल की तरह है सही सारा ब्रह्मांड उसी जल में तैरता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड कारण जल में तैरता है और सबके भीतर गर्भोदक साइस होते हैं और उनके नाभि से कमल निकलता है और उसमें ब्रह्मा जो उत्पन्न होते हैं और जगत की सृष्टि होती है ब्रह्मांड के भीतर। और जब भीतर भगवान नाप रहे थे ब्रह्मांड के भीतर, तो वहां से नापे पैर के अंगे से बाएं पैर के अंगे से ब्रह्मांड का कवर फट गया और इसमें आठ अंग रहे सात, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार सबके ऊपर सारा कवर फाड़ कर और छेद हो गया ब्रह्मांड में। और स्पेशल जल जो है उस कवर उस छेद से होकर भगवान के पैरों को धोते हुए नीचे गिरने लगा और आज तक कोई मिस्त्री मरम्मत नहीं कर पाया, फट गया एक वैसे ही फटा हुआ है। और वह स्पिरिचुअल जल उस छेद के माध्यम से इस ब्रह्मांड के भीतर गिरता है। तो सबसे ऊपर के लोग है ब्रह्मा जी के लोग, आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं, मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ। फाइव कांटो के 17 स्कंध के 17 अध्याय। अब शुरू में पढ़ेंगे तो गंगा अवतरण की कथा है, तो किस प्रकार ब्रह्मांड का कवर फटा और फटने के बाद उनके पैर को धोकर गिरने लगा। तो ब्रह्मा जी के जाते समय देख लिए तो भगवान का चरण है और उस चरण का स्वागत करना चाहते थे, तब तक आगे बढ़ा और ब्रह्मांड कवर फाड़ दिया। तो वहां से चरण जल को धोता हुए चरण को धोते हुए गिरने लगा, रोकने का कोशिश किए लेकिन गिर कर बंद न रात तक गिर रहा है। तो गुरुवाचा की घाटियों पर कड़कड़ करता हुआ उस नीचे जल आता है सत्यलोक में, फिर वहां से तीन जगह डिवाइड होता है। तो ब्रह्मा जी उस जल को रोक लिए और फिर उनके कमांडर को वहां करके बाहर निकलने लगा और तीन भाग में डिवाइड होकर अलग अलग समुद्र में गिरता है। उसी का एक अंश जो स्वर्ग में था उसको भगीरथ जी प्रयास करके आए यहाँ भारतवर्ष में और यहाँ हिमालय से होते हुए भगवान शिव के जटा से गुजरते हुए गंगा गंगोत्री से होकर भारतवर्ष में आती है। तो वह गंगा जल आज भी वही सोर्स है, स्पिरिचुअल सोर्स वहाँ कारण जल वहां से आता है। तो भगवान के चरण के स्पर्श होने से गंगा जल इतनी पवित्र हो गई है। चरणोदक होने के कारण उसमें लोग नहाते हैं और नहाने से सचमुच पाप खत्म होता है और भगवान के भक्त लोग भी नहाते हैं इसलिए कि भगवान के चरणों को धोकर आई है। तो गंगा में क्षमता मिल गया क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों के संपर्क में है। तो यह जदेश पुरुषम ऋषभ श्रेय पति
यह पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ लक्षण कहते ही जो ब्रह्मणा अपना जन्म लेकर जगतों की महानता को बढ़ा दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कथा करते समय कहते हैं, ये तो सुख गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब मैं जगतों का वर्णन करूंगा। जगतों का वर्णन करूंगा तो कहते हैं कि जगतोपेवे भगवान, जिस जगकुल का वर्णन सुनने पर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और क्यों मुक्त हो जाता है, क्या विशेषता है, जहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रभु भगवान जिस कुल में अवतार लिए, इसलिए जगकुल की महिमा बढ़ गई। परिणामी महापुण्यम मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, महापवित्र सर्व पाप हरम निराम, जीवों के सभी पाप को हरण करने वाली कथा, जगर बलसर नरम श्रुत्वा सर्व पापी प्रमुख सुते, मैं जगपुल का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसका वर्णन सुनने पर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जगकुल का वर्णन इसलिए करना चाहता हूँ, जगतोपेवे भगवान परमात्मा मेरा कृष्टि, जिसमें भगवान अवतरण हुए हैं जिस कुल में। भगवान के जन्म लेने के कारण जगकुल बहुत पवित्र हो गया है और इसकी कथा सुनने वाले व्यक्ति का सभी पाप समाप्त हो जाता है। तो जगदेश पुनसम ऋषभपति लक्ष्मीपति स्वजन्मना अपना जन्म लेकर इस जगकुल को इतना कीमती बना दिया, इतना यशस्वी बना दिया। और स्व संक्रमणे न संक्षति, संक्रमण करके चल चल कर ब्रज को महिमा बढ़ा दिया, इतना पुण्य बना दिया। आपको ऐसा लगेगा कि सारा ब्रज भगवान के चलने से कहीं हो गया, कोई समय बचा है जहाँ भगवान का चरण नहीं पड़ा है। दो पैंट नहीं चलते थे, वो भी चप्पल जूता नहीं पहनते थे। एक बार माँ यशोदा कही कि बेटा जंगल में घूमना पड़ता है, कंकड़ीली भूमि में तुम जूता पहन कर जाओ, चप्पल पहन लो बेटा। तो कहते हैं मैया तो कैसी बात करती है, मैं गोपाल हूँ, मैं गायों का पालक चरवाहा हूँ, गाय हमारी स्वामिनी है, उन गायों को चराता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, और वो हमारे मालकिन बिना जूता चप्पल के चले और नौकर होकर जूता चले, मैं उनका नौकर हूँ ना, अगर तुमको मुझे जूता पहनाना है तो ये काम करो कि जितनी गाय है उनके लिए जूता बनवाओ, 9 लाख गाय बचिया सबके लिए 4-4 जूता चाहिए। और कहते थे धूप लग रहा है, बारिश हो जाता है, छतरी ले लो, क्योंकि हाँ छतरी बनूंगा, सभी गायों के लिए छतरी की व्यवस्था करो। और वो बेचारी अपने से छतरी ले नहीं सकते, तो जितनी गाय है उतना नौकर छतरी लेने वाला, उतना नौकर और उतना चप्पल जूता की व्यवस्था करो, इसके बाद मैं भी ले लूंगा, मैं भी जूता पहन लूंगा और मैं भी छतरी ले लूंगा, यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो मैं नहीं लूंगा। इसका कारण यह था कि भगवान के मन में था कि ब्रज में बिना जूता चप्पल के घूमना है, चलो केवल दो पैरों से नहीं, एक साल के जितने बच्चे थे उतने बच्चे ब्रह्मा जी की कृपा से, और जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए, लाखों बछड़े बन गए और उनके चार चार पैर, और जितने गोद पका थे उनके दो दो पैर, उन पैरों से सारे ब्रज में घूम लिए थे, जगह बाकी नहीं, सब जगह एक साल घूम रहे थे। और तो दो पैर में ओरिजिनल है ही, वो भी ओरिजिनल नहीं था, कोई डुप्लीकेट नहीं था, विस्तार था अपना। तो इस प्रकार भगवान कोई जगह नहीं छोड़े हैं जहाँ उनका चरण नहीं पड़ा है। अब ब्रज से इतना प्रेम करते हैं कि यहाँ के रोटी कौन चलाए, घास ही खाए हैं, बछड़ा बनकर यहाँ के घास खाए हैं, ब्रजवासियों के गोपियों के गोद में खेले है। केवल यशोदा के गोद से उनको संतोष नहीं हुआ, बच्चे बनकर कई गोपियों के घर में गए, कईयों के हाथ से खाए। और ऐसे भी अकेले यशोदा लाल माँ यशोदा के दूध के तो संतोष नहीं होते थे। जो भी माताएं जो स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं हैं बच्चे वाली, वो उठा कर कृष्ण को अपना आसन पिलाने लगती थी। तो सोचो कि इस तरह से इन लोगों की आस पूरा नहीं होगा, इनका बच्चा ही बन जाता है। और तरसती रहती थी कि यशोदा कितना पुण्य क्या है कि उनको ऐसा पुत्र हुआ है कि भगवान उनका भी पुत्र बन गए। एक साल तक पुत्र बनकर रहे। और गाय भी तरसती थी कि हम कृष्ण को दूध पिलाए। ऐसे दोहे हुए दूध तो पीते ही थे, हिरक में जाकर जब बछड़े दूध पीते थे तो बछड़े को धक्का मारकर सब पीने लगते थे मुँह से। और जब पूरे लगते थे अपने मुँह लगा कर अपने मुँह से सीधा उत्पन्न पीते थे, तो गाय अपने बछड़े को भी नहीं आने देती थी, इन्हीं को पिलाती थी और इनको ही चाटती थी। तो अब डायरेक्ट बछड़े को हटा कर क्या पीना है, बछड़े ही बन गए अब सभी गायों के दूध पीने के लिए। एक साल तक बछड़ा बने, एक गोद चखा बने और ब्रज के कण कण में घूमे हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है कि ब्रजमंडल में भगवान का चरण नहीं पड़ा है। चाहे वो गिरिराज के ऊपर घाटी हो, एक काम वन हो, चाहे जमुना के कुलीन हो, कोई ऐसा जगह नहीं, सब जगह घूमे हैं। तो उनके घूमने से और पवित्र हो गया। एक बार भगवान उसको तीर्थराज प्रयाग को सारे तीर्थों का राजा बना दिए। तीर्थराज प्रसिद्ध है प्रयाग, जहाँ संगम है गंगा जमुना, तो वहाँ भी एक प्रसिद्ध कुंभ लगता है 12 साल में। इस समय नासिक की बारी है, कभी प्रयाग की भी बारी आती है। तो वहाँ वो तीर्थराज बना दिए भगवान, सारे तीर्थों का स्वामी लीडर। तो नारद जी बड़े मस्ती वाले हैं, भक्ति के आचार्य हैं। एक दिन पहुंचे तीर्थराज के पास, नया बात सुना, आप तीर्थराज हो गए? हाँ हो गए ना। सचमुच एकदम सर्वसम्मत से सारे तीर्थ आए, भगवान उनको मुकुट पहनाया है तीर्थराज का। लेकिन हमको कुछ सस्पिशन है, शंका है कि आप पूरा पूरा तीर्थराज नहीं है। पूरा पूरा मतलब आपका सभी तीर्थों धामों पर अधिकार नहीं है, एकदम है भगवान बनाया है। अगर मैं कैसे विश्वास कर लूं? कहते हैं जैसे कहिए, आप एक मीटिंग कीजिए, बुलाइए सारे तीर्थों को, इनवाइट कीजिए। आपके बुलाए पर सभी तीर्थ आ जाएंगे तो मैं मानूंगा। तो कहे ठीक है। तो कोई फेस्टिवल चालू किए प्रयाग में और सबको इन्वाइट किए, सारे तीर्थ आ गए, लेकिन ब्रजमंडल नहीं गया। इसके पास दो दो तीन तीन बार नोटिस भेजे, सूचना निमंत्रण के साथ साथ एकदम ऑर्डर भेजे, फिर भी नहीं गया। तो तीर्थराज तो कहे नारद जी की सब आ गए, तो कहे कि हाँ सब आ गए लेकिन ब्रजमंडल नहीं आया। तो क्यों? पता नहीं, कभी सूचना दिया नहीं आया। तो अब जाकर पूछता हूँ। तो प्रयागराज खुद आए यहाँ और आ करके कहे कि आपको सूचना मिली थी? हाँ मिली। आए तो नहीं लेके गए? नारद जी साथ में थे। कैसा बोल रहा है कि मैं क्यों जाऊं? अरे हमको तीर्थराज बनाया गया होगा तुमको तीर्थराज, लेकिन हमारा मालिक तुमको नहीं बनाया गया है, यह अहंकार मत करो। ये तो आया नहीं, दूसरा एकदम सामने से जवाब दे रहा है उदंड जैसा। तो अब तो जैसे बात करना बेकार, माथा फोड़ना है, चलो भगवान से पूछ करो। तो भगवान के पास गए। प्रयागराज पूछते हैं कि भगवान मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, प्रणाम वणाम करने के बाद, फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद। तो कहे कि हाँ बुद्धि बोलिए। तो आप मुझे तीर्थराज बनाए? हाँ, इसमें कहाँ डाउट है। लेकिन ये आपका धाम जो ब्रजमंडल है वृंदावन, ये हमारी बात नहीं मान रहा है। मतलब क्या बात नहीं मान रहा है? कहे जी मैंने उसको बुलाया प्रयाग, ये नहीं गया। दो तीन बार सूचना दिया, नोटिस दिया, ऑर्डर दिया, सब किया, फिर मैं स्वयं आया। अगर मैं तो नहीं, एकदम उदंड जैसा जवाब दे रहा है। देवर्षि जी गवाह है, सामने है। तो भगवान को समझ रहे थे सब नारद का कृपात है। तो कहे कि फिर तो एक दम है मेरी बात मान रहा है, मैं सब में पेट आज हूँ तो मेरे अंदर सब होंगे। तो भगवान क्या बोले, गदहा कहीं का मूर्ख, तो मैं पेटों का मालिक बनाया तो अपने घर का मालिक बना दिया, तुम्हारे मन में ऐसी बात आई कैसे कि मैं मथुरा मंडल पर कब्जा करूं, ये भोजमंडल मेरा निजी घर है, इससे कोई इससे बढ़कर कौन हो सकता है, इसका मालिक तुमको राजा बना दिया, मंत्री बना दिया, इसका मतलब कि मैं अपने घर का मालिक बना दिया तुमको, मूर्ख हो तुम, गधा हो। तो गधा कहे और इतना ही नहीं, एकदम पेट भरा तो कांप गया, प्रभु मैं नहीं समझा, मुझसे भूल हो गई। यानी भूल ऐसे नहीं मिटेगी, तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो प्रायश्चित क्या है, ब्रज में गधा बनकर रहना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी हम लोग गधा देखते हैं ब्रज में, तो उनको कम जय होती उस राज प्रयाग। जब से हम सुने हैं महाराज, जब से इसको बतलाए, तब से मैं यहाँ ब्रज में गधों को देख कर तीर्थराज का कर रहा हूँ। तो अब आप अंदाज कर सकते हैं कि तीर्थराज जब गधा बनकर रहते हैं तो और तीर्थ क्या बनकर रहते होंगे। तो यह है महिमा ब्रज की, यह क्योंकि भगवान का एक निजी घर है और यहाँ स्वाभाविक भजन होता है। स्वाभाविक जैसे आप एयरपोर्ट पर या बड़े बड़े रेलवे जंक्शन पर देखे होंगे बिजली से चलने वाली सीढ़ी, क्या कहते हैं उसको, एस्केलेटर, स्वयं स्वयं चालित सीढ़ियां, एस्केलेटर स्वयं चलती है और उस पर उसके भी लोग चलते हैं, वो तो चल रही है और दिल्ली एयरपोर्ट पर तो जमीन ही चलने वाला बना दिया है, तो चालीसी लोग उस पर भी चलते हैं जमीन पर। जमीन सीढ़ी नहीं है, एकदम समतल है फिर भी चलने वाला है, तो उस पर केवल चल जाना है और पहुंचा रहेगा, सीढ़ी सीढ़ी पर चलना है वो पहुंचा देगा। तो वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ केवल आ जाएगा तो भजन होने लगता है स्वाभाविक। और यहाँ बिना तीनों कंठों में ढोली के घूमने वाला लगेगा कहाँ का बेवकूफ मैं घूम रहा हूँ, दो दिन चार दिन ज्यादा नहीं, एक दो दिन के बाद फीलिंग करेगा कि मुझे भी माला जप करना चाहिए बिना टीचिंग के, क्योंकि सभी लोग राधे राधे बोलते हैं, सभी लोग हरे कृष्ण जपते हैं, चारों को भगवान का नाम सुनाई देता है, रिक्शा वाला दुकानदार सभी लोग राधे राधे हरे कृष्ण हरि बोल सब बोलते हैं, यहाँ टैक्सी वाला रिक्शा वाला सभी, तो यहाँ भगवान का नाम स्वतः सुनाई देता है और उसमें भी कोई गंभीरता से 16 माला 64 वाला जप करने लगे तो अब क्या करना है। यहाँ के हर तरह के धन लगता है, धन चले तो गंगा स्नान से भी ज्यादा पवित्र करता है क्योंकि भगवान के चरण को छू कर आता है। तो एक व्यक्ति महाराज श्री से कह रहा था, कोई विदेश का अमेरिका का व्यक्ति था गुजराती, महाराज यहाँ बहुत दस्त है, घूमने का मन नहीं करता है, धूल इतना उड़ता है, नाक में पड़ता है, मुंह में तो दिमाग खराब हो जाता है। तो महाराज कहते हैं वो धूल दिमाग ठीक करने के लिए जाता है, खराब करने के लिए नहीं, आपका खराब दिमाग पहले से है इसलिए खराब लग रहा है, या धूल जब मुंह में आ जाता है नाक में पेट में तो भीतर चित भी पवित्र करता है, वो भगवान को चरण को छू कर आता है, इसलिए यहाँ के धूल में इसकी छोड़ शक्ति है। दूसरा दर्द पड़ जाएगा ना तो आपके जो भीतर की गंदगी है वो ठीक हो जाएगा। तो ये इसका अनुभव नहीं होता है क्योंकि हम लोग संसार के वातावरण में रहते हैं। एक महाराज एक किस्सा कहते हैं कि एक गांव में दो सहेली थी, आपस में दोनों सखी थी एक गांव के, लेकिन सयानी होने के बाद दोनों का दो जगह विवाह हो गया और दोनों दो जाति की थी, एक मालिनी की बेटी थी और एक मलाह की, जो मछली मारने वाला मलाह होता है, मलाह जानते हैं नदी पर जो नाव चलाते हैं, एक की बेटी थी और एक माली सैनी जो पोला मेला बनाते हैं उनका, तो दोनों दो बाई गई, तो जो मलाह की बेटी थी, कुंवर की बेटी, उसका काम है तो मछली पोखरे में लेना, बाजार में ले जाना, बेचना। एक दिन मैं बेच करके लौट रही थी अपने गाँव, तो अंधेरा हो गया। तो शहर के निकट उसके सखी का गाँव था, मैंने ससुराल। तो सोची कि चलो इतने दिन के बाद आज जाने का अवसर मिला, आज सहेली के यहाँ रुक जाते हैं और सुबह निकल जाऊंगी। तो वो आई तो बड़ा खुश हुई, दोनों मिलकर आपस में उसको बढ़िया से खिलाई पिलाई बैठाई। देर रात तक समाचार हुआ, बहुत दिनों के बाद मिलन हुआ था। इसके बाद जब सोने का टाइम आया तो उस बेटे को नींद ही नहीं आ रहा है। तो इसको जाओ तक नहीं, बड़ा तुम्हारे घर में गंध आ रहा है, कहीं चौड़ा गुलाब और बेला, कहीं फूल रखा हुआ था ना माला बनाने वाला, सभी घरों में फूलों का गंध आता था। तो कहीं भी मुझे नींद ही नहीं आ रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि सिर फट जाएगा, तो बहुत गंध आ रहा है। अरे ये तो अच्छा गंध है, सुगंध है। तो हाँ तुम्हारे लिए अच्छा है लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो लास्ट में क्या थी कि जो मछली बेचने वाला टोकरी था जिसे मछली रखते रखते जो करवाई गंध आ रहा था, उसको जब सिरहाने तकिए के पास रखे और उसमें से थोड़ा थोड़ा मछली का गंध है तब उसको नींद आया। तो जो बदली हुई मानसिकता है, जो दिल्ली बम्बई न्यूयॉर्क इंग्लैंड रहने वाले हैं, उसकी बेटी की तरह बदली हुई मानसिकता है, उनको ब्रज के सुगंध नहीं आता है। यहाँ आने पर भी वही दिखाई देता है, धूल है, सुअर है, यहाँ काट फूस, यहाँ दिखाई नहीं देता कि यहाँ स्पिरिचुअल क्षमता है। इसमें जो दोस्त कौन सा अमृत किए पति जन्म नाचन क्रमय नचान सती, यहाँ चल चल करके एक एक पर पवित्र बनाए हैं, यह क्षमता यहाँ रहने वाले लोगों को ही अनुभव हो सकता है। जो धीरे 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 रहते रहते जब संत लेते लेते इसी में ही फिर जाएंगे तो आने लगेगा आनंद, अभी नहीं आता है। अभी तो देखने का भी अब कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को जो 10 साल 5 साल रह गए, उनकी स्थिति हो जाती है कि यहाँ के छोड़ने के बाद उनका मरण होने लगता है, कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया। मैं बिल्कुल जोते ही कर रहा हूँ, एक दिन अभी 2 महीना समाज के बाद 1.5 महीना पहले एक भक्त है महाप्रसाद दास, महाराज की सेवा किया है, महाराज के सेवक के रूप में बहुत रहा है। और फोन कर पहले तो फोटो व्यक्त किया, आपकी संन्यास की बधाई उधाई, खूब खुश होकर हंस हंस कर बात किया। केवल 5-6 मिनट के बाद जो रोने लगा उसको चुप कराने में मुझको 5-7 मिनट लग गया। और महाप्रसाद ऐसे मत करो, वो कह रहा कि मामा जब ब्लड की याद आती है तो लगता है कलेजा फट जाएगा। मुझे मामा कहता है और मैं क्या बतलाऊ, कहाँ मैं फंस गया, किधर हालांकि आ गया, मेरे पूर्व जन्मों की पाप है, ऐसे अपने बात क्या नहीं कर रहा था, रो रहा था, रोते जा रहा था। मैं जब तू ऐसा क्यों कर रहा है, आ ना, तो मैं निश्चित आऊंगा, एकदम नहीं अच्छा लगता है, मैं वास्तव में पापी हूँ, अभागा हूँ, कोई अपराध हो गया है, राधा रानी के चरणों में ब्रज भूमि से मेरा प्रणाम कर दीजिएगा, ब्रज के किसी भी धूल में लौट कर मेरा प्रणाम बोलिएगा। इतना रो रहा था। मैं कहा सुबह आपको प्रणाम करूंगा ब्रज भूमि को, चिंता मत करो, मैं अभी करता हूँ, चलो मैं उठ कर अभी करता हूँ। तो चुप तो रहो, मैं थोड़ा मोबाइल पे बात करते हुए दंडवत करता हूँ। चलो छाप से उतर कर जमीन पर आया और प्रणाम किया, महाप्रसाद में एकदम प्रणाम करके बोला कि रो मत, अच्छा नहीं लग रहा है, इतना रोया कि मैं भी अधीर हो गया। तो बताइए, 2-4 साल ब्रज में रह गया है, इससे भिन्न वातावरण उसको बुरा लग रहा है, एकदम बुरा लग रहा है, कोई बनावटी नहीं कर रहा है, अभी 17-18 को आ रहा है। तो मैं नहीं कुछ करूंगा यहाँ, कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे ऐसा कम कर रो रहा है। तो जो यहाँ रह गया है उसको बाहर अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए राधे श्याम प्रभु की एक टेक्निक है कि कुछ दिन ज्वाइन करने के बाद बाहर के जगत में 2-3 साल अनुभव के लिए भेजते हैं कि देख लो कैसे कैसा वातावरण है, आप नौकरी कर लो, जब कर लो, वहाँ के शिक्षणता का बोध हो जाए और मंदिर के स्पिरिचुअल टेस्ट मिल जाए, और दोनों में आप अंतर कर लो, क्या दिक्कत है, कहाँ क्या सुख है। तो यह निर्णय करने के बाद गौरंग सभा ज्वाइन करने में आनंद आता। वो तीन सभा रखे हैं, एक गौरंग सभा, दो स्टूडेंट उनके आते हैं संपर्क में, तो धीरे धीरे ट्रेनिंग देकर एक गौरंग सभा, एक नित्यानंद सभा, एक निताई गौरंग सभा। गौरंग सभा में वो ज्वाइन करता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है जिसको ब्रह्मचारी बनना है, मंदिर ज्वाइन करके और लाल पहनना है, विरक्त रहना है। नित्यानंद सभा जिनको विवाह करना है, और अभी जो सक्सेसर है जो तीन साल दो साल चार साल जॉब करने के लिए कहते हैं कि बाहरी जगत को अनुभव हो जाए, कैसे दोस्त को फ्लेटली करना पड़ता है, कैसे आपस में डीलिंग करना पड़ता है, टॉप क्लास की मानसिकता और उन लोगों के पास डीलिंग करना पड़ता है पैसे के लिए। जब पैसे की तीक्ष्णता को लोग समझते हैं भागवत पढ़कर या व्यवहारिक जीवन में अनुभव करके, तब समझ में आता है कि भागवत का, भगवान नाम का, भगवान के धाम का क्या विशेषता है, क्या सुख है। चाहे कितना भी हाय हाय करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जो नेचर से ही बुरा है वो सुख कैसे दे देगा। जिसके नेचर ही बुरा है और जो आग का नेचर है जलाना, तो उसमें शीतलता कैसे आ सकती है। नहीं आया, अगर आपको शीतल करने का प्रयास करेंगे तब आग नहीं रहेगा, उस आग बुझ जाएगी। आग का अर्थ है हीटर, गर्म देने वाला। तो ऐसे ही जो बाहर के संसार के भौतिक सुख जिसको कहते हैं, उसका नेचर है बुरा। भागवत में कई जगह बात कहा गया है, कही गई है भगवत गीता में भी भागवत में भी, कि देखिए एकादश स्कंद के तीसरे अध्याय में तीसरे का 18 नंबर का श्लोक 11:3-18 प्रभु पति प्रवचन करते हैं। प्रश्न है निमि महाराज का, नौ प्रश्न किए हैं नौ जोगेश्वरों से, ऋषभ देव के नौ पुत्र जोगेश्वर हैं, दिवक कवि हरि अंतरिक्ष प्रबोध पिपलायन आदि होत दुमिल चमस करभाजन। तो चौथा प्रश्न है महाराज का, दुष्कर माया से कैसे पार किया जाए। पहला प्रश्न है भगवत धर्म क्या है, दूसरा है भगवत भगवत भक्ति का लक्ष्य क्या है जिसे भगवान प्रसन्न होते हैं, तीसरा माया का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, चौथा माया से पड़ने का उपाय क्या है। तो प्रभु भगवान उत्तर देते हैं। पहला श्लोक, एक श्लोक पर विचार करना है, कहते हैं कर्मोरोपणाय दुख हत्ते सुखाय च कर्मारी आरभ बनाना नाम। किसी भी कर्म को आरंभ करने के लिए दो उद्देश्य होता है। कोई भी बिजनेस, व्यापार, दुकान, मकान कुछ भी चालू करते हैं, यहाँ का कोई भी कर्म प्रारंभ करते हैं, चाहे बिजनेस चालू करें या दुकान खोलने या खेती बाड़ी चालू करें या जो भी, उसका दो लक्ष्य है। क्या दो लक्ष्य है? एक है दुख हटते ही और दूसरा सफाई से, जो हमारे महाराज का दुख लगा हुआ है दुख की हत्या हो जाए, दुख खत्म हो जाए और सुख प्राप्त हो जाए, हमको सुख मिल जाए, दुख समाप्त हो जाए। लेकिन होता क्या है? कश्यप, कश्यप मैंने देखे, विचार करे कि क्या ऐसा होता है। कश्यप पाप विपर्यासम, लेकिन देखे कि रिजल्ट क्या होता है, विपर्यासम उल्टा होता है, दुख खत्म नहीं होता, सुख मिलता नहीं। मिथुनी चरणम मिलना, मिथुनी चरणम मतलब परस्पर पुरुष एक दूसरे से सुख चाहते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्यों के द्वारा जो प्रयास है वह उल्टा हो जाता है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। कोशिश करते हैं सुख के लिए, सुख मिलता नहीं। स्त्री पुरुष से सुख चाहते हैं, पुरुष स्त्री से सुख चाहते हैं, दोनों मिलने के बाद केवल दुख ही जाते हैं। किसी भी रास्ते में दुख हटता ही नहीं, मिटता नहीं। जैसे ब्रज के कुछ वर्तमान कुंडा है, छोटे छोटे काई दिखते हैं, कभी पवित्रता के दृष्टि से चलो गोविंद कुंड डुबकी लगा लेते हैं तो उसको काई को ऐसे हाथ से हटाते हैं फिर डुबकी लगाते हैं, फिर आ जाता है, फिर हटाते हैं फिर आता है, फिर हटाते हैं फिर आता है। इसी तरह यहाँ का प्रयास है, दुख मिटाते हैं कोशिश करते हैं, दुख लगे बेचारे की खा लिए फिर लगेगा, बुखार आ गया एक दो टैबलेट खा लिए फिर बुखार आएगा, वो आता रहता है। इसी को संघर्ष को ही बस दुख मान लेते हैं। अब आगे और विस्तार से कहते हैं, नित्य आपके दिन बीते ना दुर्लभ ना, एक धन को ले लो भाई, नित्य आपके दिन रोज दुख देने वाला है। भाई जी हनुमान प्रसाद बताते हैं जो गीता प्रेस के संस्थापक, कि माया और भगवान दो टॉपिक है, एक के विषय में सोचते हैं दुख प्रारंभ और एक के विषय में सोचते हैं सुख प्रारंभ। अगर माया को कोई भी आइटम आप प्राप्त करना चाहते हो उसके संकल्प से ही दुख प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ नित्य आपके द्वारा। जैसे स्त्री चाहिए, स्त्री सुख चाहिए तो उसके लिए धन चाहिए, धन प्राप्त करने की वेदना में ही दुख हो जाता है, कैसे प्राप्त करें, कहाँ जाएं, अमेरिका का डॉलर लें कि पाउंड कमाएं, इंग्लैंड जाकर कि क्या करें, यहाँ कोई जॉब करें, कौन बिजनेस चालू करें, उसके मानसिकता में ही दुख बढ़ जाता है। और नित्य आरती देना बीते ना, रोज दुख देने वाला वो बीत है। और दूसरी विशेषता उसकी क्या है, दुर्लभ है ना, ऐसा नहीं कि रोड पर फेंका हुआ है मिल जाएगा, कठिन है प्राप्त करना, कठिन है, और जब भी मिल गया तो आत्मनिर्भरता दुर्लभ है। और तीसरी विशेषता है आत्मनिर्भरता, आत्मा की मृत्यु हो गया खत्म, मृत्यु हो गई, भजन नहीं करेगा, आत्मा का तो विनाश ही हो गया। अरे महाराज परसों दिन सुना रहे थे कि एक व्यक्ति, एक लड़का आया कहा कि महाराज मुझे अमेरिका जाना है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपसे दोनों शिक्षा लिया हूँ, आप मुझको लिख दीजिए कि मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा स्वभाव अच्छा है, मेरा मुझे मिलने में सुविधा हो जाएगा। महाराज उसके बाप तक का नाम जानते हैं लेकिन कहे कि मैं तो आपको पहचान ही नहीं रहा हूँ। तो महाराज मेरे गौर किसी को जी दीक्षा दिलाए थे, आप मेरे यहाँ आए हैं, मैं आपकी सेवा किया हूँ लेकिन मैं नहीं पहचान रहा हूँ। वो आप ठीक कह रहे होंगे, आप उनसे दीक्षा लिए होंगे लेकिन मैं नहीं पहचान रहा। तो फिर डॉक्टर को वहाँ बुला दिया फोन करके, यही आए थे और बोले हाँ महाराज जी आपका शिष्य है, मैं नहीं पहचान रहा हूँ। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, जब तो मेरा शिष्य होता, अगर कभी धर्म से दीक्षा न ले लिया तो तुम्हारी योग्यता खत्म हो गई मेरे से, तो तुम्हारा इतना सहज नहीं होता कि भजन छोड़ने के लिए गुरु के पास आ जाता है। अमेरिका जाने का अर्थ है भजन छोड़ना, और मेरे पास मेरा शिष्य नहीं आ सकते हैं भजन छोड़ने, मेरे पास भजन करने के लिए आ सकते हैं, और तुम भजन छोड़ने के लिए मुझसे सर्टिफिकेट ले रहा है, तुमको मैं किसी भी हालत में मैं तुमको अमेरिका भेज कर तुम्हारा भजन छोड़वा सकता हूँ, मेरे नेचर में है, मेरा एकदम थर्ड क्लास का शिष्य भी है, जानता है कि मैं भगवान से जोड़ सकता हूँ छोड़ा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मेरी शिष्यता की कोई योग्यता नहीं, तुमने कैसे साहस किया, जितने लोग गए हैं मुझसे डर का दबा हुआ गए हैं, मुझसे कब कब परमिशन लेकर नहीं गए, चाहे कोई हो जिनका नाम ले लो उनका ये साहस नहीं है कहकर कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और मैं उनको कह दूँ हाँ बहुत अच्छा करा है बेटा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो भजन छोड़ने के लिए मेरे पास आ गया और मुझसे कह रहे थे वो केसौड़ा वाला सोफा से क्या लगता है, मुझको उनके बाप तक का नाम बता रहे थे, सब कुछ बतला रहे थे और कह रहे थे मैं उसे ऐसा बोला, और मैं उसको डांटा कि यदि तुम मेरा शिष्य हो, किसी का शिष्य हो, तो देखो भजन करने का सबसे बेस्ट जगह है भारतवर्ष, और उसमें भी वृंदावन, वृंदावन धाम में आकर तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, तुम मेरे प्रति अपराध कर रहे हो, इसका मतलब कि तुमने मेरा कीमत नहीं समझा, इसलिए तुमको कम से कम प्रायश्चित करना पड़ेगा, जाकर ठीक से जप करो, भजन करो, और अमेरिका जहाँ जाना हो यह बात मन से हटा दो, मैं तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह है इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ तुम भजन करो। और भक्ति को रोको भी दो चार बातें खुश सुनाए, कि आपके मन में कैसे आया कि मैं इसके इस लेटर पर साइन करूंगा। आप नहीं जाने मेरे स्वभाव को, मुझे तो पता है मैं कह रहा था, लेकिन मैं केवल यह बताने आया हूँ कि आपका शिष्य है। यह गवाही देने आ रहा हूँ। तो फिर बाद में लास्ट में चलते चलते कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये कितना बेवकूफ है। इतना डांट दिए कि बेचारा उनसे तो कभी जीवन में बात नहीं कर सकता और 10 लोगों को बतलाएगा। ऐसे डांट है। तो इसका यह अर्थ है कि नित्य आरती देना बीते ना, ये रोज कुछ देने वाला है और दुर्लभ है ना, दुर्लभ है और आत्मनिर्भर ना। आत्मा तो मृत्यु मतलब माला रख देना पड़ेगा डॉलर कमाने में। माला तो रख ही देना पड़ता है, वेश भी रख देना पड़ता है, ये सब लाल रख कर पैंट पहन कर बाहर जाकर काम करना पड़ता है होटलों में और क्या नाम है पेट्रोल टंकी और गैस पर जाकर काम करते हैं लोग। आते समय भारत में लाल पहन ले दूसरी बात, लेकिन वहाँ भजन नहीं होता है। तो यह दुर्लभ है आत्मनिर्तना उसी प्रकार दौर्धन है गृह आपत्ति पशु भी का प्रतिशत पैसे नहीं है, घर मकान पशु भी उस समय हाथी घोड़े थे, आज कार मोटरसाइकिल इत्यादि। इससे क्या सुख मिलने वाला है? कुछ नहीं। साधुपी अगर जुटा भी लिया तो चलेगी, इसका स्थायी संबंध नहीं है, इसका साथ छूटने वाला है। तो धन का कलेक्शन कर भी लिए तो आपके शरीर ही छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, सलई का गया है, इससे कोई संबंध नहीं। तो यह सब बात केवल सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं। भागवत में यही बात मैं बारह में कहा था, वहाँ तो लोकनाथ महाराज एक दिन क्लास में कह रहे थे कि गौरकृष्ण महाराज कई भागवत के विश्रम देकर कहे कि यहाँ सुनने भर से संतोष नहीं कर रहा है वक्ता, देखे विचार करे करने वाला बात है। प्रभु जी कहते तब से देखे बुरा है ना, ऐसा होता है ना, तो कहे हाँ। और भगवान भी कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषों दर्शन देखो, और दर्शन मतलब बार बार मुड़ कर देखो क्या है। जन्म के पहले आप कहाँ थे, मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे, फिर आपके जीवन में बुढ़ापा बीमारी क्या है, क्यों है। जैसे सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं कौन ही अमर जाने तापत्र है, यह नहीं जाने अमर के मन हित है। और पूछे मैं कौन हूँ, क्यों मुझे सताया जा रहा है, मेरा क्या स्वरूप है। तो उसको कहते हैं देखना, जन मृत्यु दर्शन और दर्शन पा रहे हैं, बार बार देखे इशार करें। तो इस तरह से इशार करते देखना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान के धाम में आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका सौभाग्य है। आप इसकी महिमा को समझेंगे जब इसका सेवन करेंगे बार बार। बार बार आएंगे तो यहाँ के धर्म पड़ेगा, यहाँ के भक्तों का संग होगा, तो यहाँ से प्रेम करने वाले भक्तों के मुख से कथा सुनेंगे। भगवान में जिनका चित्त आसक्त है ऐसे भक्तों की कथा सुनेंगे, ऐसे भक्तों के मुख से, तब यह स्तुति मनोहरा होगा। यहाँ कहा गया ना, जो श्लोक हम रिपीट कराए उसमें स्पष्ट रूप से बतलाया गया कि इनका चित्त उत्तम श्लोक में लगा हुआ था, इसीलिए इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं। उत्तम श्लोक चेतसाम कॉन्शियसनेस के लिए ही है, चित्त जिनका कृष्ण है ऐसे प्रफुल्ल की स्त्रियां कह रही है, अहो अलम श्लाघ तमम जदो कुलम, अहो अलम पुण्य तमम मधुर बनम, जदो सपन साम ऋषभ श्री पति, स्वजन मनाचन कमरे न छांछती। तो उनके चित्त भी कृष्ण है, उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना या उत्तम श्लोक चित्त सब कहा गया। तो धाम में आने का सबसे बड़ा लाभ है यहाँ के रज का संपर्क होना और यहाँ के उत्तम श्लोक सब लोगों के मुख से इनकी कथा सुनना, तब सब तो ब्रज में लगेगा, ब्रज की महिमा समझ में आएगी। ठीक है, हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।
कृपा करके अपनी महिमा सामने खोलिए। जब गोस्वामी जी ने आए तो आज वृंदावन गिरिराज जमुना से प्रार्थना करते थे, अपना स्वरूप दिखाइए मुझे, आप कहाँ अपने को छुपा लिए हो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आर्ध भाव से रो रो कर वो लोग पाते थे। तो वैसे ही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से भी प्रार्थना यही करना चाहिए कि आप अपने नाम, अपने गुण, लीला महिमा मुझको बतलाइए, मैं अनुभव कर सकूं कि उसमें दिव्यता है। कृपा कीजिए मुझको फीलिंग हो कि मैं आपके धाम में हूँ। धाम अपनी विशेषता जब स्वयं कृपा करके बताएगा तब समझ में आएगा। तो साधन सिद्ध नहीं है, ये तो कृपा साध्य ही है, इसलिए कृपा की याचना तो होनी चाहिए। तो बड़े बड़े संत जो 50-60 साल से रहते हैं, अब तो कृपा करो से राधे रमेश बाबा रोज चिल्लाते हैं, उनको अब तक पता ही नहीं चल रहा है कि कृपा है। उन्हीं से प्रार्थना करना चाहिए कि हमको अपना स्वरूप बताओ। और वास्तव में भगवान जब तक नहीं बताएंगे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।